हरिः ॐ हरिः ॐ हरिः ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ॐ नारायण 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 नारायण
भगवत कृपा से आज से ये छह दिन का केनोपनिषद सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। केनोपनिषद सामवेद के तलवकार शाखा का उपनिषद है। कहते हैं सामवेद की 1000 शाखाएं थीं, जिसमें से अब सिर्फ 4 शाखाएं उपलब्ध हैं, और उपनिषद तो सिर्फ 2 ही शाखाओं के उपलब्ध हैं। कौथुमी शाखा के उपनिषद है छांदोग्य, और तलवकार शाखा के उपनिषद है केन उपनिषद। इस उपनिषद का नाम केन उपनिषद क्यों पड़ा है? जैसे ईशावास्य उपनिषद को ईशावास्य नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसका प्रथम मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम् इससे प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से केनोपनिषद का प्रथम मंत्र केनेशितम् केन से प्रारंभ होता है, इसलिए इसका नाम केनोपनिषद पड़ गया। तो व्हाट इज देयर इन ए नेम, कुछ भी नाम रख दो। नाम तो सिर्फ इसलिए होता है कि दूसरे से अलगाव हो। जहां विधिवत पाठ चलता है उपनिषदों का, वहां पहले के ईशावास्य, उसके बाद फिर केन का नंबर आता है। ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मंडू, किस प्रकार से। बहुत छोटी उपनिषद है ये, तो चूंकि ये था कि 6 दिन में पूरा हो जाए एक दृष्टि, तो केनोपनिषद पर एक दृष्टि 6 दिन में रखेंगे। बाकी तो भाष्य से अगर आप पढ़ेंगे तो 6 दिन में थोड़े ही हो सकता है। इसका जो मुख्य विषय है वो ये जिज्ञासा है कि इस सृष्टि में करने वाला कौन है, इस शरीर में करने वाला कौन है, और इस सारे संसार में करने वाला कौन है। तो आस्तिक दृष्टि से तो तुरंत ये जवाब आ जाता है कि ईश्वर ही सब करने वाले हैं, लेकिन चूंकि ईश्वर किसी को दिखता नहीं है तो वो परोक्षता ही उसमें बनी रहती है। भाव से उसके निकट हम आते जरूर हैं, लेकिन ऐसा साक्षात अनुभव नहीं होता है कि ईश्वर ही कर रहा है। होता है कि हाँ, ईश्वर हमको निमित्त बना करके और ईश्वर कर रहा है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, गीता का ये श्लोक आधा सुना देते हैं। करने वाला ईश्वर है, वो कराने वाला ईश्वर है और हम उसमें निमित्त मात्र करता है। तो भक्ति में तो इतने से काम चल जाता है। इसको नियोज्य कर्ता बोलते हैं पारिभाषिक शब्दों में। वो हमको नियोजन कर रहा है, जोत रहा है कर्म में, इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। उसमें जीव का स्वातंत्र कितना है इसका पता नहीं चलता। तो जैसे सृष्टि में ईश्वर करता है, ऐसे ही इस शरीर में कौन करता है, अगर ये निर्णय हो जाए कि कौन करता है, तो इस शरीर में जो कुछ भी होगा वो तो हमारे लिए साक्षात अनुभव स्वरूप ही होगा। यहां परोक्षता नहीं है। अगर यहां ये मानेंगे कि कोई परोक्ष ईश्वर इसमें बैठा हुआ और हमसे करा रहा है, तो वो तो ऐसे ही जैसे सारे संसार में ईश्वर करा रहा है, ऐसा नहीं है। तो प्रारंभ तो इसका होता है इसी जिज्ञासा से कि कौन इसको करा रहा है। फिर ये प्रश्न होता है कि क्यों करा रहा है, इसकी इच्छा कहां पैदा हो रही है। इच्छा और कराना, इन दोनों की कनेक्टिंग लिंक क्या है। इच्छा कोई करे, करावे कोई, तो घबला हो जाएगा उसमें। जो इच्छा करे वही करावे, तो वो करता होना चाहिए। और आत्मा को सब अकर्ता बताते हैं, तो बड़ी समस्या है कि कौन इच्छा करता है और कौन कराता है और कौन करता है। अब आज के जो विचारक लोग हैं वो कह देंगे इन बातों से क्या मतलब है, कर्म कर रहे हैं हम, इतना ही पर्याप्त है। एक जगह ऐसे ही प्रवचन किया तो विद्यार्थी थे, तो उनसे मैंने कहा भाई आप पानी पीते हो, टैप खोल लेते हो, पानी पी लेते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये पानी आ कहां से रहा है। अगर ये जिज्ञासा आपको जग जाए कि पानी कहां से आ रहा है, तो उस सोर्स की तरफ आपकी निगाह जाएगी। ऐसे ही इस शरीर में सारी क्रियाएं हो रही हैं। अगर ये जिज्ञासा हो कि ये कहां से इसकी प्रेरणा हो रही है, क्यों हो रही है, तो हम सोर्स तक पहुंच जाएंगे। यहीं से अध्यात्म का प्रारंभ होता है। तो एक विद्यार्थी उठ करके बोला, जी हमें इससे क्या मतलब, कहीं से आ रहा सही पानी, पानी आ रहा है और हमको प्यास है इसलिए हम पी रहे हैं। मैंने कहा भैया तुम्हारी उम्र में जब हम थे तो हम भी ऐसे ही सोचते। ये तो मैच्योरिटी जब बढ़ेगी विचार की, तब ये प्रश्न उदय होंगे। इसको उपनिषद ने दो भागों में विभाजित किया है। एक भाग में तो इस शरीर में कौन इच्छा करता है और कौन करता है, इसका उत्तर है। और एक भाग में सारे संसार में कौन इच्छा करता है और कौन करता है, इसका उत्तर है। और दोनों एक ही है, ये तो सभी उपनिषदों का तात्पर्य है। जो आत्मा है सो ही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है सो ही आत्मा है। तो सरलता के लिए पहले समष्टि वाले की चर्चा करें। तो कहते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ, और उसमें देवता विजयी हो गए। विजयी हो गए तो उन्हें गर्व हो गया कि हमने विजय प्राप्त की है। भगवान ने कहा कि ये जब मुसीबत पड़ती है तो मेरे पास दौड़ के आते हैं, बचाओ बचाओ, और जब बच जाते हैं तो कहते हैं हम अपने पुरुषार्थ से बच गए। इसलिए इनका ये भ्रम और गर्व जो है दूर करना चाहिए। तो आदमी का घमंड जो है वो अपने से छोटे के सामने तो बहुत बढ़ जाता है, और जब अपने से कोई बड़ा दिखलाई पड़ता है तो उसका घमंड छोटा हो जाता है। तो भगवान ने सोचा कि इनका घमंड दूर करने के लिए मुझे कोई ऐसा रूप धारण करना पड़ेगा जो इनसे बड़ा भी हो और जाति में इनसे छोटा हो। तो मनुष्य से ऊपर और देवताओं से नीचे एक यक्ष जाति होती है, यानी देवताओं से नीचे होते हैं वो यक्ष, कुबेर के अनुचर होते हैं। आजकल यक्षों की संख्या बहुत तो क्योंकि कुबेर का ही जमाना है और खास तौर से मुंबई में, तो यक्ष के रूप में भगवान ईश्वर जो है वो प्रकट हुआ और इतना बड़ा यक्ष का रूप बनाया कि देवता देखने लगे कि ये है तो यक्ष लक्षण से तो, लेकिन इतना बड़ा यक्ष तो आजकल हमने कहीं कभी देखा ही नहीं। तो इंद्र ने कहा कि पता लगाना चाहिए कौन है। तो अपने दो सिपहसालार को उन्होंने भेजा, एक अग्नि और एक वायु। अग्नि को अग्नि क्यों कहते हैं तो भाष्यकार लिखते हैं कि जो आगे आगे चले उसको बोलते हैं अग्नि। जैसे यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ करने के बाद फिर जब आदमी मरता है और तत्व ज्ञान नहीं हुआ है तो उत्तरायण मार्ग से जाएगा या दक्षिणायन मार्ग से जाएगा, तो उसको ले जाने वाला कौन होगा? तो बोले वो जिस यज्ञ में, जिस अग्नि में आहुति दी है वो अग्नि देवता ही उसको आगे आगे लेकर के चलता है। आजकल के नेता तो सबसे पीछे रहते हैं, लाठी बंदूक चले तो पहले आगे वाले मरे, नेताजी पीछे से और अग्नि देव जो है ये पहले आगे आगे चलते हैं और जीव जो है ये पीछे पीछे चलता है, इसलिए उसको अग्नि बोलते हैं। तो अग्नि से कहा कि अग्नि तुम जाओ पता करो कौन है। तो अग्निदेव गए वहां, उन्होंने पूछा, यक्ष ने पूछा कि आप कौन है? बोले मैं अग्नि हूं, सब देवताओं में बड़ा हूं। बोले क्या कर सकते हो? बोले दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको मैं जला ना सकूं, सबको जला सकता हूं। तो उन्होंने एक तिनका उठाया और उसके सामने रख दिया, बोले अच्छा इसको जलाओ। अब अग्निदेव जो है उसके ऊपर से होकर दसियों बार घूमे फिरे लेकिन वो नहीं जला। तो उन्हें ख्याल आया कि ये तो कोई अजीब व्यक्ति मालूम पड़ता है, इससे अब आगे बात नहीं करनी चाहिए नहीं तो अपनी इज्जत चली जाएगी। तो वो चुपचाप वहीं से लौट करके आ गए और इंद्र से कहा कि मुझे पता नहीं चला ये कौन है। इंद्र ने कहा कि वायु देवता तुम जाओ। अब वायु देवता गए, उनसे भी वही सवाल हुआ, आप कौन है? बोले मैं वायु देवता हूं। क्या कर सकते हो? बोले चाहे जिसको उड़ा दूं। बोले जरा इस तिनके को उड़ाना। अब उसने भी बहुत तेरी कोशिश कर ली, वो तिनका उड़ा नहीं उससे, वो भी चुप चुपाने वहां से वापस लौट के आ गया। बोले मुझे पता नहीं चला। तब देवताओं ने कहा महाराज जब इन्हीं के बस की नहीं है तो और किसी देवता को मत भेजो, अब आप ही खुद जाओ और पता लगाओ कि ये कौन है। अब इंद्र पता लगाने चलते हैं। इस कथा का जो आध्यात्मिक रहस्य है उसे भी साथ साथ समझते चलें तो कथा समझने में आसान होगी। ये जीवात्मा को ही इंद्र बोलते हैं। ऐत्रेय उपनिषद में इंद्र की व्याख्या दी है, बोले इदम् इंद्रयति इति इदंद्रा। इदम् को, यह को जो जनाए, जो जाने, उसको बोलते हैं इदंद्र। इसमें दा का लोप करके और इंद्र बोला जाता है। बोले लोप क्यों किया? बोले परोक्ष प्रिया ही देवा, देवताओं को नंगा अच्छा नहीं लगता है, ढक करके बोलना अच्छा लगता है। तो इदंद्र जो है ये तो नंगा है और इंद्र जो है ये ढका हुआ है, लेकिन अर्थ इसका वही है कि जो यह को प्रकाशित करे, तो यह को प्रकाशित करने वाला तो अहम है नारायण। एतद् यो वेत्ति तम प्राहु, तो यह को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, तो क्षेत्रज्ञ का नाम इंद्र है। और ये अग्निदेव कौन है? तो बोले अग्नि जो है ये वाणी का देवता है। जितना भी ज्ञान होता है वो बिना शब्द के नहीं होता, ये व्याकरण का पक्का सिद्धांत है। ना आप बिना शब्द के कुछ सोच सकते हो, ना बिना शब्द के आप कुछ बोल सकते हो। क्या है वो न सोचते प्रत्यय लोगे या शब्दानुगमात्र थे। तो शब्द के बिना जो है वो कोई ज्ञान नहीं हो सकता नारायण। तो इसलिए लोग जो कहते हैं ना आदि तो शब्दों के चक्कर में पड़े हैं, तो शब्दों के चक्कर में तो पढ़ना पड़ेगा नारायण, वरना तो आपको कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता। ये फूल है, ये माला है, ये किताब है, ये फलाना है, ये जितने शब्द हैं इनसे तो इनका ज्ञान होता है। दूसरी बात यह है कि ज्ञान हमेशा भेदक होता है। जब हम कहते हैं ये फूल है तो ये किताब नहीं है, ये बात तो पक्की हो गई। ये रुमाल नहीं है, ये बात भी पक्की हो गई। बिना भेद किए हुए कोई ज्ञान नहीं होता। तो मन समेत जेह जान न बाणी, तर्क न सकई सकल अनुमानी। तो मन भी जिसको नहीं जान सकता और वाणी भी जिसको नहीं कह सकती, वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये श्रुति है। वाणी मन समेत जहां से लौट आती है नारायण। तो ये अग्निदेव गए पता लगाने, था तो वो ब्रह्म, लेकिन पता कैसे लगता? क्योंकि वहां तो वाणी की गमी नहीं है, इसलिए लौट आए। अच्छा, वायु, वायु जो है ये गति का देवता है, और गति जो है वो उसी से, वो कर्म उपलक्षण है। तो कर्म से भी परमात्मा का पता नहीं लगता, ये इसमें प्रारंभ में शंकराचार्य जी ने यही बात सिद्ध की है कि कर्म से तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन वो हमारा इस समय विषय नहीं है। तो कर्म का देवता वो भी लौट आया नारायण, और अग्नि जो वाणी का देवता है वो भी लौट आया, और जीव को रिपोर्टिंग कर दी कि हमें पता नहीं चला ये ब्रह्म कौन है, ये कौन है, ब्रह्म है कौन है क्या पता। अब इंद्र गए नारायण उसको, तो उनके सामने से वो यक्ष जो था वो गायब हो गया। अब वो बड़ा पछताए इंद्र, उन्होंने कहा अरे मैं तो घटिया रहा, कम से कम अग्नि से और वायु से उसने बात तो की, मेरे से तो बात ही नहीं की उसने, तो मुझे उसने हीन समझा। लेकिन वो दृढ़ था कि मैं पता करके रहूंगा कि ये कौन है। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं कि वो जहां अदृश्य हुआ था और इंद्र जहां उस समय खड़ा था वो वहीं खड़ा रहा, वहां से टस से मस नहीं हुआ। बोले मैं जान के रहूंगा कि ये कौन है। इतनी ही जिज्ञासा प्रबल होनी चाहिए। बोले नहीं जाने तो कोई बात नहीं है, इस जीवन में न सही। अरे बोले कौन ने देखा है, अगला जीवन फिर जा लेंगे, इससे कौन सी हानि है। लेकिन इंद्र जो है वो वहां खड़ा रहा, मैं जान करके ही रहूंगा। तो फिर वहां पर हेमवती देवी प्रकट हुई है। हेमवती देवी नाम इसलिए है कि वो स्वर्णमय थी, चमकदार थी। हेम सोने को बोलते हैं ना, लेकिन उसको दिया है ब्रह्म विद्या। जब मनुष्य ब्रह्म को जानने में दृढ़ प्रतिज्ञ होता है तब कोई ना कोई उसे ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाला व्यक्ति मिलता है। केवल ब्रह्म विद्या से ही ये जाना जा सकता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है और हमारा उससे क्या संबंध है। तो जब हेमवती प्रकट हुई तो इंद्र ने पूछा कि ये यक्ष कौन था। उन्होंने कहा कि ये तो ब्रह्म था। बोले ब्रह्म यक्ष रूप में क्यों आया। बोले तुम लोगों ने अभिमान कर लिया था कि हमने विजय प्राप्त की है। कर्माभिमानी तो जीवात्मा होता है ना, जो भी कर्म हम करते हैं उसका अभिमान भी तो हम ही करते हैं कि हमने किया। और वो स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि आज की तो स्थिति बड़ी अजीब है, जब कहीं सफल हो जाते हैं तो कहते हैं हमने किया, और जब असफल हो जाते हैं तो कहते हैं ईश्वर की ऐसी मर्जी थी। असफलता में ईश्वर का हाथ और सफलता में अपना हाथ, तो यही गर्व का चिन्ह है, घमंडी है। तो बोले तुम लोगों ने ये घमंड कर लिया था, इसलिए तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए वो सामने प्रकट हुआ, और यक्ष के रूप में इसलिए हुआ कि तुमसे नीची जाति का शरीर उसने धारण किया था। छोटे से यदि हार जाए तो उसका गर्व चूर हो जाता है, और बड़े से हार जाए तो बोले कोई बात नहीं है, वो तो पहले से बड़ा ही था, हम हार गए तो क्या बात। अब उसने कहा कि अच्छा तो ब्रह्म बताओ ये क्या करते हैं, उनके बारे में प्रश्न उत्तर चालू हुए। तब उन्होंने कहा कि ये प्रश्न इसके लिए थोड़ी साधना करनी पड़ती है। क्या साधना करनी पड़ती है। बोले कि एक तो सत्य यानी तप, दम, सत्य और कर्म, ये चार चीजें जीवन में लानी पड़ती है। तप इंद्रियों और मन का समाधान, ये तप है, ये भाष्यकार ने लिखा है। मन शांत रहे, अपने अपने गोलकों में स्थिर रहे, चंचल ना हो, इसके लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। चंचल तो वासनाओं के कारण से अपने आप होते ही हैं ये, तो तुम्हारा पुरुषार्थ क्या रहा। अगर तुमने उसको चंचल ही रखा तो तुम्हारा पुरुषार्थ तो इसी में ही है कि उनकी चंचलता को रोक करके और उनको उन्हीं के गोलक में स्थापित कर दो। तप और इंद्रियों में संयम, दम और कर्म। कर्म का मतलब यज्ञ यागादिक जो शास्त्रीय कर्म हैं, अब आजकल उनका रूप बदल गया है क्योंकि वो वैदिक यज्ञ तो अब कहीं देखने को भी नहीं आते, लेकिन आदमी जो भी काम कर रहा है उसको ही हम यज्ञ का रूप दे सकते हैं। इसके लिए जो गीता में चौथे अध्याय में यज्ञ के स्वरूप बताए हैं वो ध्यान में रखना चाहिए। सर्वोत्तम यज्ञ जो है वो ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि कर्म में यही सर्वोत्तम यज्ञ है। तो जितनी त्रिपुटियां कर्म की बनती हैं उनमें से त्रिपुटियों में सब में ब्रह्म दृष्टि रखना ये यज्ञ की स्पिरिट है। तो इस स्पिरिट से यदि कर्म किए जाएंगे तो वो यज्ञ हो जाते हैं। और सत्य बुद्धि जो है वो हमेशा सत्य की पक्षपातनी होती तो है लेकिन हम रखना नहीं चाहते, असत पक्ष में हमारी बुद्धि चली जाती है। वो कारण किसी का कुछ भी हो लेकिन बुद्धि जब असत पक्ष में जाती है तो वो फिर समझौतावाद चालू हो जाता है। एक समझौता फिर दूसरा समझौता फिर तीसरा समझौता, कहां से कहां पहुंच जाता है। इसलिए बुद्धि को हमेशा सत पक्ष में रखना चाहिए। ये कह के ब्रह्म विद्या अंतर ध्यान हो गई। अब शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ये चलते रहने चाहिए ये चारों साधन या पहले होने चाहिए। तो कहते हैं ये पहले होने चाहिए। अगर ये चलते रहेंगे तो अपने में जो कर्तापन का भाव है वही पुष्ट होता रहेगा और मैं आत्मा अकर्ता हूं ये भाव कभी जन्म ही नहीं ले पाएगा। इनको सहकारी साधन भी नहीं मान सकते कि दोनों चीजें साथ साथ चलती रहें। इसलिए ऐसा करके अंतःकरण शुद्ध कर लो और फिर गुरुजी के पास पहुंच करके और फिर ये प्रश्न करो जहां से ये पहला चैप्टर शुरू होता है। ये उसकी भूमिका शंकराचार्य जी ने यही मानी है कि ऐसा ही कोई शिष्य है जो जिसने ये सब तपस्या की हुई है अब उसके मन में ये जानने की इच्छा है कि आखिर ये मेरे जीवन में जो कर्म हो रहा है इसके पीछे कौन इच्छा करता है, कौन इसका करने वाला है, कौन इसका प्रेरक है। केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति श्रोत्रं चक्षु कौ देवो युनक्ति। ये प्रश्न है शिष्य का गुरुजी से। केन इच्छितम्, किसके द्वारा इच्छित हो करके, और केन प्रेषितम्, फिर किसके द्वारा प्रेरित हो करके, भेजा हुआ हो करके। माने दो शिष्य के मन में दो है कि इच्छा करने वाला कोई है और उसको फिर लगाने वाला कोई दूसरा है, प्रेरित करने वाला दूसरा है। इच्छति जानाति करोति या इच्छति फिर करोति, आजकल कहते हैं फिर जानाति। पहले लोग कहते थे जानाति इच्छति करोति। विज्ञापन का जो है जो सिद्धांत है वो है जानाति इच्छति करोति। आप नया प्रोडक्ट अपना निकालते हो तो उसका विज्ञापन करते जाओ, विज्ञापन करते जाओगे तो आप में उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाएगी, फिर उस माल को खरीदोगे जरूर। जानाति इच्छति करोति। और जो वैदिक सिद्धांत है वो है कि इच्छति जानाति करोति। पहले इच्छा उदय होती है, फिर उस इच्छा की पूर्ति का ज्ञान होता है और फिर उसका कर्म होता है कि इसको कैसे पूरा किया जाए। तो वो ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा इच्छित होकर और किसके द्वारा प्रेषित होकर के, भेजा हुआ होकर के, केनेशितम प्रेषितम मनः पतति प्रेषितम मनः। ये मन जो है टूट के पड़ता है, पतति शब्द है ना, पतत मन गिर पड़ता है। जिन विषयों पे हमारी बुद्धि भी कहती है कि नहीं इन्हें नहीं स्वीकार करना चाहिए लेकिन कभी कभी मन नहीं मानता है नारायण। डायबिटीज वालों को तो खास तौर से होता है, بڑھیا چیز میٹھی کھانے کو دیکھی، بولے چلو کوئی بات نہیں ہے، ایک گولی اور کھا لیں گے، ٹوٹ کے پڑتا ہے. تو بعض شکار لکھتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ من جو ہے یہ سوتنتر نہیں ہے، اس کو کوئی زبردستی لگا رہا ہے. اور بھگوان نے گیتا میں، وہاں بھی کہنا اپنشد ہے گیتا میں تیسرے ادھیائے میں، اتھ کین پرایوکتویم پاپم چرتی پورش انچنپی وارشنے بلا دیو نیوجتا. ارجن پوچھتے ہیں بھگوان کس کے دوارا پریوکت ہو کر کے، جوتا ہوا ہو کر کے یہ منشیہ پاپاچرن کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اور نشد کرم میں پرورت ہو جاتا ہے. بھگوان نے کیا اتر دیا وہاں؟ ہاں نہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کرے بھائی مایا ہی ایسی ہے، میری مایا سے سب موہت ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ اویدیا کا پرنام ہے. بولے کام ایش کرودھ ایش رجوگن سمدھ. یہ رجوگن سے اتپن جو کامنا ہے یہی پھر کرودھ بھی بن جاتی ہے نارائن. یہ کام کرودھ مل کر کے، کام دو بار کیوں بولے؟ یہ تو بھاشیکار نے تو اتنا ہی لکھا ہے کہ کام جو ہے وہ جب پورا نہیں ہوتا تو کرودھ بن جاتا ہے، اور پورا ہو جاتا ہے تو لوبھ بن جاتا ہے، اور اگر مان لو لوبھ بھی ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ کام کرودھ لوبھ، پھر یہ بنا رہے، یہ موہ ہو جائے گا. اور پھر اگر بنا بھی رہا تو پھر دوسروں سے تلنا بھی کریں گے، مد ہوگا، جلن بھی ہوگی دوسروں سے، ماتسریہ ہو جائے گا. یہ چھوں بھیا ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، جیسے ایک کوا کہیں پہنچ جائے اور کہاں اس نے کاؤں کاؤں کری تو پورا پریوار اکٹھا ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک کام اگر آ گیا تو پھر ایک کے بعد ایک چھوں کام کرودھ لوبھ موہ مد ماتسریہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. بولے بس یہی ہے. اب وہاں کا وشے تو چونکہ کرمیوگ کا ہے گیتا کا، تو وہ بتاتے ہیں کہ کہاں رہتا ہے کام. بولے اندریوں میں رہتا ہے، من میں رہتا ہے، بدھی میں رہتا ہے، سب جگہ کام ہے نا رہے. اور میں نے اس پہ تھوڑا وچار کیا اور آج کا جو منوویگیان ہے اس کے حساب سے دیا وچار کرو تو آپ کی رکت کی ایک ایک بوند میں کام ہے، اس سے پار پانا بہت کٹھن. کیونکہ ماتا پتا کے کام سے تو آپ کی شریر کی اتپتی ہوئی ہے نارائن، تو وہ تو پورا کا پورا ویاپت ہے. اسی لیے کام کیول استری پرش وشے کی کام نہیں ہوتے ہیں، وہ سنسکار سب پورے رکت میں بھر جاتے ہیں. لیکن اس سے چھٹی پائی جا سکتی ہے. کیسے؟ بولے تسمات تم اندریا نیادو نیمیہ بھرتر شبھ پاپمانم پرجہی ہینم گیان وگیان ناشنم. یہ گیان وگیان کا ناشک جو کام ہے اس کے ناش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم تسمات تم جان بوجھ کر کے اندریان نیادو نیمیو، پہلے اندریوں کو وش میں کرو، پھر من کو وش میں کرو، پھر بدھی کو وش میں. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اندریوں کو تو کھلی رکھو، اس پہ کوئی پابندی لگاؤ مت. بچوں سے بھی کہو نا کہ اگر آپ ٹی وی مت دیکھو، کم سے کم امتحان کے دنوں میں تو مت دیکھو. لیکن مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہاں تو آپ کو نیم میں باندھنا پڑے گا. اندریوں کو نیم میں باندھو تو من جو ہے وہ بدھی اور اندریوں کے بیچ میں شٹلنگ کرتا ہے. تو اگر اندریاں نیم میں بندھ گئیں تو من جو ہے وہ اندریوں کا ساتھ چھوڑ دے گا، وہ پھر بدھی کا پکشپاتی ہو جائے گا. अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया ना, थर्ड सेक्स जो है तो ये मन जो है ये थर्ड सेक्स है, नपुंसक लिंग है, बुद्धि स्त्रीलिंग है। तो इंद्रियाणि, इंद्रियों को संयम में करो, मन फिर बुद्धि का साथ देने लगता है, क्योंकि उसे तो ताली बजानी है ना, रहे इंद्रियों के साथ नहीं बजाएगा, तो बजाएगा तो मन के साथ बजाएगा, वो बुद्धि के साथ बजाएगा, तो आपका काम बन जाएगा। और कहा कि प्रजा ही मार डालो इसको, इस पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं। कैसे मारे? बोले ज्ञान से मारो। ये अज्ञान रूपिणी है, रजोगुण समुद्भव बताया ना, इसलिए ज्ञान से मारो। ज्ञान से कैसे मारे? बोले अपने को समझो तो सही कि तुम कौन हो। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसके मारने की बस एक ही तरकीब है ना, कि अपने को आप आत्मस्वरूप समझो, बुद्धि से भी परे, बुद्धि का भी जो साक्षी है भावाभाव का नारायण वो मैं हूं, तो आप अपने में हीन भावना क्यों करते हो? जहां आपने अपने आप को आत्मस्वरूप समझा तैसे ही इन सब की जान निकल जाती है, क्योंकि आपके द्वारा ही इनमें शक्ति डाली हुई है। अपनी शक्ति जब हम वापस खींच लेते हैं तो इनमें शक्ति नहीं रहती, ये फिर आपको भटका नहीं सकते नारायण। ये गीता का केन उपनिषद है। अब यहां पे कह रहे हैं कि केन इष्टतम केन प्रेषितम पतति मनः, ये मन जो है टूट कर पड़ता है विषयों में, तो कौन इसकी इच्छा करता है, कौन इसको भेजता है? और केन प्राण प्रथमः प्रतियुक्तः, किसके द्वारा ये प्राण जो है प्रथम प्राण और ये युक्त तो होता है। अब यहां भाष्यकार ने तो लिखा है कि प्रथम प्राण माने यही जो मुख्य प्राण है, इसी के लिए प्रथम मुख्यता से कह दिया, लेकिन एक विचार है उसे सुन लीजिए, आपको पसंद ना आवे तो। ये प्राण शरीर में कब चलना शुरू हुआ? सांस की बात नहीं कह रहा हूं मैं, सांस तो जब बाहर आ जाता है गर्भ से तब चालू होता, फेफड़े जब चालू होते हैं तब सांस चलता है। तो ये तो गर्भ में ही चालू हो जाता, पांचवें महीने में तो मालूम पड़ता है माता जी, वो तो गर्भाधान के समय से ही, क्योंकि वो बढ़ना शुरू हो जाता है वहां पर, तो वहां प्राण की क्रिया तो चालू हो गई। और कब तक चलेगा ये प्राण? जब तक ये शरीर है मरने तक ना। इसलिए निश्चिंत रहो, प्राण का हेतु जो है, जिस हेतु से शुरू हुआ है, जब तक वो हेतु रहेगा तब तक आपके प्राण शरीर को नहीं छोड़ेगा। एक्सीडेंट्स की बात छोड़ दीजिए, वो तो अकाल मृत्यु मानी जाती है, तो अकाल मृत्यु की बात नहीं कर रहे। तो प्रथम प्राण माने जिस समय गर्भ में जीवात्मा आया उसी समय से ये प्राण चालू हो जाता है, क्योंकि बिना प्राण के कोई गति ही नहीं है, न शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर। कारण शरीर अज्ञान रूप है, तो वो तो जीवात्मा के स्वरूप से एकम एक रहता है, तभी आता है गर्भ में, वरना आवे क्यों? आया और प्राण को लेकर के ही आता है, ऐसे समझो। तो अब ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, सब अनुभवी है ना रहे। तो ये प्रथम प्राण का मतलब यही है कि ये प्राण जब शुरू हुआ तो किसकी इच्छा से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ये मौलिक प्रश्न है। किसकी इच्छा से शुरू हुआ? अरे हम चाहते थे कि हम शरीर धारण करके ये सुख भोगें, इसलिए ये प्राण चालू हुआ। और अगर ये चाहने लगे कि अब बहुत हो गया नारायण, अब तो बस यही हमारा आखिरी जीवन हो, तो इच्छा जब समाप्त हो जाएगी तो भगवान भी आपको नया शरीर देने में समर्थ नहीं है। जीव की इच्छा के अनुकूल ही ये शरीर मिलता है। भागवत में ऐसा लिखा है कि ये इंद्रियां क्यों बनी? बोले आपने इच्छा की कि मैं देखूं तो आंख बन गई, आपने इच्छा की कि मैं सुनूं तो कान बन गए। एक एक इच्छा का परिणाम ये सब इंद्रियां हैं। ये शरीर की रचना भी सब इच्छाई के अनुरूप होती है। तो बोले फिर तो कोई अपंग नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि इच्छा तो किसी की गलत होती नहीं है। बोले इच्छा तो सबकी ठीक है, लेकिन दूसरा प्रश्न भी है ना कि किसके द्वारा भेजा हुआ हो करके, यही प्रश्न है मूल में कि इच्छा तो सबकी ठीक है लेकिन भेजने वाला कोई दूसरा है। अब कोई ऐसा पाप उसका उदय हो गया ना रहे जिसकी वजह से वो देखना तो चाहता है लेकिन आंख नहीं बन पाती। बोले नहीं, आजकल तो आंख जो है दूसरे आदमी के निकाल कर लगा देते तो उसमें ईश्वर क्या करेगा, वो तो डॉक्टर ही आपको दिखा देगा सब कुछ। तो हाँ, दिखा तो सकता है लेकिन अगर उसका प्रारब्ध में नहीं है देखने का ना रहे, तो वो आंख लगा करके भी नई आंख से भी नहीं देख पाएगा। अरे ऑपरेशन कराते हैं, डॉक्टर कहता है कि नहीं जी अब नहीं, आंख में पर्दे में रोशनी नहीं है इनके। ये पर्दे में रोशनी क्या चीज है भाई? तो वही तो इंद्रिय शक्ति है देखने की। तो वो शक्ति अगर रहेगी तो आंख बन भी सकती है, दूसरे की आंख से देख भी सकते हैं। और उस शक्ति का ही ह्रास हो जाए या समाप्त हो जाए तो फिर नहीं देख सकते। ऐसी प्रत्येक इंद्रिय की है। अब लगा लो कानों में वो कौन सा ईयरफोन होता है, क्या होता है, तो निकालना पड़ता है उसे, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, तो काम चला हुआ चीज है। और फिर एक स्थिति यह आती है कि सुनना ही बंद हो जाता है। तो केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त और केनेशिताम वाच मिमाम वदंती, ये वाणी जो है ये किसके द्वारा बोलती है? फराफर बोलता चला जाता है। अच्छा, सब बच्चे अपने माँ बाप की भाषा जो है कोई सिखाता है क्या? उन्हें बोलते सुन सुन करके बोलने लग जाते हैं, और जो भाषा माँ बाप की होती है वही भाषा बोलने लगते हैं। अंग्रेजी वाले हैं तो अंग्रेजी शुरू हो जाती है, हिंदी वाले हैं तो हिंदी शुरू हो जाती है, गुजराती वाले हैं गुजराती शुरू हो जाती है। नारायण नारायण। तो केने शिताम वाच मिमाम वदन्ति, किसकी इच्छा से ये सब वाणी बोल रही है? और ऐसे भी हैं जो नहीं बोल पाते हैं, दम प्राणी जो होते हैं, तो इच्छा तो है उनकी बोलने की, लेकिन इच्छा होते हुए भी ये पाप पुण्य का चक्र ऐसा है नारायण कि ये जब तक साथ न दें तब तक किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए जानबूझ करके कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अब पहले जन्मों में हमने क्या किया है ये तो किसी को पता भी नहीं है, और अब उसमें कुछ सुधार भी नहीं हो सकता। लेकिन इस जन्म में जो भी है उसको जानबूझ करके हमें कोई गलत काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिसे पाप कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में एक ही समस्या है, द प्रॉब्लम ऑफ सिन, वहां दूसरी कोई समस्या नहीं है। बोले ईसा मसीह जो है वो हमारे सब पापों को लेकर के और सूली पर चढ़ गए नारायण। अब अगर तुम उनमें विश्वास करोगे तो तुम्हारे सब पाप माफ हो जाएंगे, नहीं तो पापों का परिणाम फिर भुगतोगे, हेवन और हेल में जाना पड़ेगा। मुसलमानों में भी ऐसा ही है, अपने यहां ऐसा नहीं है। अपने यहां तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो हो गया वो हो गया, अगर अब जान अब अगर फिर पाप करोगे तो फिर परिणाम भुगतना पड़ेगा। कोई किसी का सेवियर नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं सब पापों को से मुक्त कर दूंगा। महाराज जी कहते हैं कि सब पापों के बाप से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि पापों का बाप जो है ये जीव जीव धर्म है, तो जीव धर्म में समाप्त कर दूंगा। लेकिन जीव धर्म ना होने पर भी पहले जन्मों के किए हुए पापों की से प्रेरणा मिलती जो है उसको तो चेक करना पड़ेगा। ये वैदिक सिद्धांत की दूसरे सिद्धांतों से फर्क है। तो कहते हैं कि केने शिताम वाच मिमाम वदंती श्रोत्रम चक्षु कौ देवो युनक्ति। वो कौन सा देवता है, देवता माने जो प्रकाश करे उसको देवता बोलते हैं, द्योतनशील जो प्रकाश करे, वो कौन सा देवता है जो कान में बैठ करके शब्द का प्रकाश करता है, आंख में बैठ करके रूप का प्रकाश करता है। तो सब लोग यही जानते हैं कि आंख का देवता वेवता कोई नहीं है, आंख ही है। और ज्यादा से ज्यादा ये जो जीववादी लोग हैं ये कहेंगे कि नहीं, जीव ही एकमात्र देवता है और वो सब इंद्रियों का प्रकाशक है। लेकिन तुलसीदास जी ने देखो क्या बढ़िया चौपाई लिख दी है, तो वो संस्कृत के श्लोक का अनुवाद, लेकिन कितना सरल ढंग से लिख देते हैं। विषय करण सुर जीव समेता और सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। बोले हमारे यहां तो सबके मूल में राम है नारायण। कौन से राम? बोले विषय बाहर है, करण इंद्रियां उसके भीतर है, सुर इंद्रियों के देवता वो उससे इंद्रियों के भीतर है, फिर उनसे भीतर जीव जीवात्मा वो देवताओं से ऊपर है नारायण। इस बात को आप समझना, हम लोग देवताओं के अधीन होकर के जो जिंदगी बिताते हैं ये अवैदिक सिद्धांत है। विषय करण सुर और जीव समेता सकल एकते एक सचेता, ये एक से एक अधिक चैतन्यता इनमें भरी हुई है, चेतना ज्ञान। लेकिन सबकर परम प्रकाशक जोई, जीव तक विषय से लेकर के जीव तक इन सबका जो परम प्रकाशक है, जिसको और कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, जो सबको प्रकाशित करता है, हम तो उसी को राम जानते हैं नारायण, और उसी की हम अवधपति के रूप से उपासना करते हैं। और अवधपति का एक दूसरा अर्थ भी होता है अवधि, जहां बद्धता की अवधि हो जाए, माने वो बाधित अबाधित तत्व के लिए अवध बोलते हैं। उसका जो स्वामी है, जो जिसके ज्ञान से सबका मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, परंतु जिसके स्वयं का मिथ्यात्व निश्चय नहीं हो सकता, जो सबकी पराकाष्ठा है अवधि है, सा काष्ठा सा परागति नारायण, वही अनादि अवधपति राम है। तो ये उत्तर आना चाहिए तब सिद्धांत की बात होगी। तो पहले श्लोक में ये प्रश्न है और दूसरे मंत्र में इसका यही उत्तर है, अभी मैं उसकी बात करता हूं। अभी पहले प्रश्न के संबंध में एक बात और है, और वो ये है कि इष्टतम और प्रेषितम किसने इच्छा की और किसने भेजा। तो ये तो शिष्य का प्रश्न है। हम लोग भी ऐसा ही समझते हैं कि इच्छा तो जीव करता है और ईश्वर जो है वो रचना करता है शरीर की उसकी इच्छा के अनुरूप। तो दो हो गए क्या? तो भाष्यकार ने यहां बहुत बढ़िया बात लिखी है। वो कहते हैं कि भले ही शिष्य जैसा समझता हो और उसके अनुसार ऐसा प्रश्न कर रहा हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसकी इच्छा मात्र से ही, क्योंकि जीव और ईश्वर में कोई वास्तविक भेद नहीं है, इसलिए इच्छा मात्र से ही कर्म हो जाता है। भगवान ने इच्छा की संसार बन जाए, फिर क्या फावड़ा चलाया? तदैक्षत बहुश्याम प्रजा ये हो, उसने संकल्प किया बहुत रूपों में उत्पन्न हो जाओ, हो गया तत्तेजो असृजत, उसने तेज की रचना की। फिर तेज रूप में जब वो आ गया तब फिर उसने संकल्प किया बहुश्याम प्रजा ये हो, अभी तो एक रूप और होना चाहिए, तो फिर जल रूप हो गया। जैसे जैसे संकल्प करता जाता है तैसे ही तैसे ही उन रूपों की अभिव्यक्ति होती जाती है, रचना संकल्प के अनुसार होती है। ये जो जीव शरीर का अभिमानी बना बैठा है, इस अभिमान के कारण उसका संकल्प सिद्ध नहीं होता है, यहां उसे कर्म करना पड़ता है। और ईश्वर जो है उसके चूंकि शरीर नहीं है, संकल्प ही उसका शरीर है, इसलिए जो संकल्प करता है वही सिद्ध हो जाता है। तो शिष्य का प्रश्न तो भले ही दो हैं, लेकिन उत्तर एक ही आना है, एक ही, वही इच्छा करता है और वही भेजता है, और उसमें इंद्रियां आदि जो है ये माध्यम है। अब इसके उत्तर को देखिए। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद् वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो कान का कान है, भाषा बड़ी अजीब है ना, जो कान का कान है, मनसो मनो, जो मन का मन है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् प्राणो हि प्राणम, जो प्राण का प्राण है, वाचो हि वाचम, जो वाणी की वाणी है, चक्षुषश्चक्षुः, जो नेत्र का नेत्र है, उसको जान करके जो धीर पुरुष हैं वो अमृत स्वरूप हो जाते हैं। ये गुरु जी का उत्तर है। अब इस पर इतना लंबा विचार है शास्त्रों में, एक ग्रंथ इनका दक्षिणामूर्ति मठ से प्रकाशित है, पुराना है वैसे ग्रंथ तो, केनोपनिषद के ऊपर स्वयं प्रकाशगिरी जी ने लिखी है, सारे शास्त्रों के प्रमाण उसमें खोज खोज कर दिए हैं, काफी वॉल्यूमिनस है। तो श्रोत्रस्य श्रोत्र, अब तुलसीदास जी की देखो, उनकी तो शैली याद आ जाती है तो हृदय गदगद हो जाता है। प्राण प्राण के जीव के, जिय सुख के सुख राम, जो प्राणों के प्राण है, जो जीव का जीव है, जो सुख का सुख है, वही शैली है ना, जो के त्यों ही। तुम्हें छाणे जिन्हें सुहाय घर गृह तिन्हें विधाता बाम। ऐसे राम जी को छोड़ करके जिनको घर अच्छा लगता है उनका तो विधाता ही उल्टा हो गया है। अब वो प्रसंग के अनुसार कथा के अनुसार है दूसरी पंक्ति। प्राण प्राण के जीव के जिए सुख के सुख राम। तो कान का कान क्या है भाई? तो अब कान शब्द से ये जो गोलक है यही समझ में आता है। कान माने ये, तो क्या यही कान है जो बह रहे हैं? ये बाहर का हिस्सा तो उनके में भी होता ही है। बोले नहीं नहीं, इसके भीतर जो है वो टिम्पेनम जो टिम्पेनम है वो है असली चीज। वो जब वाइब्रेट करता है तब उसके वाइब्रेशंस माइंड को जाते हैं, तो क्या वो कान है टिम्पेनम? बोले नहीं, उसका जो यहां पॉइंट है कंप्यूटर, ये तो कंप्यूटर है ना, ये मस्तिष्क जो है, वो वाइब्रेशंस जब वो पॉइंट कैच करता है तब वो फिर उसका उल्था करता है, इंटरप्रेट करता है कि ये शब्द कोमल है, ये शब्द कठोर है, इस शब्द का ये अर्थ है। ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से वहां भरी हुई है, तब वो इंटरप्रिटेशन करता है। नारायण, तो कान का कान कौन हुआ फिर? ये गोलक हुआ कि वो टिम्पेनम हुआ कि वो पॉइंट हुआ कंप्यूटर का? अरे बोले वो पॉइंट भी तो तभी वर्क करेगा जब उसमें पूर्व ज्ञान पहले से भरा हुआ होगा, उसकी प्लानिंग जैसी हुई होगी तब ना कंप्यूटर काम करेगा। वो प्लानिंग किसने की है? तो वो तो किसी चैतन्य ने की होगी और किसी हिसाब से की होगी। तो वही जो है यत यत है उसी को हम कान का कान बोलते हैं। अभी तो केवल शब्द का अर्थ समझ लो। जो चीज है, वस्तु है, वो तो आत्मा के ही ये विभिन्न नाम है, ये बात समझानी है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो, जो मन का मन है। मन तो किसी ने देखा नहीं है, क्या देखा है? वो दृश्य नहीं होता, उसके संकल्प विकल्प मन में जो उठते हैं वही दृश्य होते हैं, उसको ही मन कहते हैं। संकल्प विकल्पात्मक मना, ऐसा करें ऐसा ना करें, ऐसा जाने ऐसा ना जाने, संकल्प होता है फिर विकल्प हो जाता है, जाए कि ना जाए। गांवों में कहावत है तो गंवारू कथा, बोले कि खाएं कि ना खाएं, कि मत खाओ, कि जाएं कि ना जाएं, कि जरूर जाओ। जाओ माने बाथरूम शौचालय। अगर मन में विकल्प हो कि जाएं कि ना जाएं तो जरूर जाओ, और खाएं कि ना खाएं जरूर खाओ। ऐसा गांवों में बोलते हैं। ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं ये ग्रहणात्मक हैं, ये बाहर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है, और जो कर्मेंद्रियां हैं ये विसर्जनात्मक हैं, ये भीतर से बाहर निकालती हैं। तो बराबर दोनों का यदि काम चलता रहे, इनटेक क्या बोलते हैं, हाँ इनपुट आउटपुट अगर ठीक चलता रहे तो शरीर ठीक चलता रहेगा ना रहे, और इनपुट बढ़ता जाए और आउटपुट बिल्कुल जीरो होता जाए तो थुल थुल होते जाएंगे ना। तो मन का मन, तो ये संकल्प विकल्प क्या चीज है? ये ज्ञान की लहरियां हैं। लहर नहीं बोल रहा हूं, समुद्र में तो बड़ा समुद्र है, छोटे जलाशय में जो اٹھتی ہیں لہریاں لہریاں ہیں. تو کبھی ہوتا ہے کہ یہ کریں, کبھی ہوتا ہے نہ کریں. کیوں ہوتا ہے؟ بولے جیسا گیان ہے ویسا ہی ہوتا ہے. اگر کہیں یہ بات ہوئی کہ یہ چیز لینے لائق ہے, بھوگنے لائق ہے, سکھ دے گی, تو سنکلپ ہوگا کہ لے لو, اور پھر کسی نے کہہ دیا رک جاؤ اس دودھ کو پینا مت, اس میں چھپکلی گر گئی تھی, پیو گے؟ تو جو مارنے والی چیز ہے اسے کون گرہن کرے گا؟ تو وکلپ ہو جاتا ہے, ارے کیا چھوڑو, ستسنگ میں جائیں گے بیٹھنا پڑے گا گھنٹے بھر, اس سے تو آرام کرو وہ اچھا ہے. وکلپ ہو گیا. اب بدھی نے تو کہا کہ بھئی ستسنگ میں جانا چاہیے, لیکن آلسیہ نے کہا کہ نہیں آرام سے سو, وہ بہت بڑھیا بات ہے. تو وکلپ ہو گیا. تو من نہیں دکھتا ہے, سنکلپ وکلپ معلوم پڑتے ہیں. کس کو معلوم پڑتے ہیں؟ تو من تو وہ آدھار ہے جس میں سنکلپ وکلپ, جس میں لہریاں اٹھ رہی ہیں, لیکن وہ من دکھتا نہیں ہے, اپنے میں ہی دکھتا ہے. تو اپنا آپا کا ہی نام من ہے یدی اس میں سنکلپ وکلپ ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ بالکل آتما کو ایسا انون کھیتر میں ڈال دیں گے تو کبھی اس کا ساکشاتکار ہوگا ہی نہیں. آتما کبھی انون ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ ظاہر ظہور رہتا ہے نا. تو صبح کے ستسنگ کا تو مکھیہ وشے یہی ہے نا کہ آتما جو ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ ظاہر ظہور رہتا ہے. اس سمے آتما ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہے, یہ تو پروکش گیان ہے. اور ہوں یہ ہے تو اپروکش, لیکن اس میں گڑبڑ ہے. ہوں لیکن یہ والا ہوں, اور اس کے ساتھ جتنی برائیاں ہیں وہ بھی ہوں, اچھائیاں ہیں وہ بھی ہوں, وہ سب جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ. شدھ ہے اور ہوں کہاں دیکھا ہے؟ تو یہ من جو ہے یہ ہے کا ہی سنکلپ وکلپ آتمک روپ ہے, اس کے روپ میں آتما ہی پرگٹ ہو رہا ہے. اس من کو گالی مت دو. بھگوان نے گیتا میں کیا کہا؟ چنچلم ہی منے کرشنا, یہ ارجن کی شکایت تھی. تو بولے کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہے, لیکن کیا ہے ویراگی نے چگری تھے ابھیاس ہے تو کون تھے ویراگی نے چگری تھے. ویراگی سے اور ابھیاس سے اس کا گرہن ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ ٹھپ ہو جاتا ہے, گرہن ہو جاتا مانے معلوم پڑنے لگتا ہے. تو آتما کی جو اپستھتی ہے وہ من کے روپ میں ہی پہلے پہلے معلوم پڑتی ہے. اب اور اس سے سوکشم چلو, منسو منو ید واچو ہی واچم. اب وانی کی وانی, مہاراشی نے کہا کہ ایک تو ہوتا ہے باڑ, وہ تو مار دیتا ہے نعرہ, اور ایک اس کی پتنی کا نام ہے وانی. باڑ کی پتنی کا نام ہے وانی. تو باڑ ذرا کٹھور شبد ہے, وانی ذرا استریلنگ ہونے کے کارن کومل شبد ہے, لیکن کام وہ بھی وہی کرتی ہے, مارتی ہے. بلکہ باڑ کا تو گھاو جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے سمے پا کے, اور وانی کا گھاو تو نارائن مرتیو شیا پر بھی یاد آتا ہے, فلانے آدمی نے ہم سے ایسا کہا تھا. تو یہ وانی کہاں سے ادے ہو رہی ہے؟ کون ہے وہ وانی کی وانی؟ یہ تو ہم صرف وانی اس کو سمجھتے ہیں جو ویکری وانی بول رہے ہیں. اس میں تو جیب اگر نہ ہلے تو شبد نکل ہی نہیں سکتے ہیں. और जीव भी कायदे से हिलेगी तो कायदे से शब्द निकलेंगे। हमारे एक टीचर थे तो वो कहते थे कि भाई आक्षेप की दृष्टि से नहीं बोल रहा, अब हंसी की बात याद आ गई इसलिए बोल रहा हूं। बोले दक्षिण की एक भाषा का नाम लिया उन्होंने कि वो भाषा तो ऐसी है कि एक घड़े में कंकड़ भर लो और उसे हिलाओ तो जो गड़गड़ गड़गड़ आवाज होती है बस वो वही भाषा है नारा है। अब बंगाली सुनो तो इतनी कोमल भाषा है, उसमें तो शाइशा होती रहती है। मराठी और गुजराती में ही बहुत फर्क है नारा है। गुजराती भाषा सॉफ्ट है, मराठी भाषा में कठोर शब्द हैं, और नीचे जाओगे तो और कठोर शब्द हैं। तो ये वाणी की वाणी जो है तो ये तो मध्यमा की बात रही, वो सॉरी वैखरी की। और सपने में कौन सी वाणी बोलते हो? मैं तो सपने में प्रवचन भी करता हूं ना क्योंकि जागृत का जैसा अभ्यास होता है वही सपने में होता है, लेकिन वो मैं सुनता हूं, दूसरा तो कोई सुनता नहीं है। कभी कभी कोई वाक्य जो है जोर से निकल जाता है तो पास में सोने वाला व्यक्ति कहता है क्या बोल रहे थे, मैंने मुझे नहीं मालूम क्या बोल रहे थे, तुम बताओ तुमने सुना क्या बोल रहे थे। बोले साफ नहीं था कुछ पता नहीं। तो एक वाणी स्वप्न में भी होती है नारायण, तो क्या वो वाणी की वाणी है? बोले नहीं, एक वाणी जो है वो सुषुप्ति में भी रहती है, मुझे कुछ पता नहीं रहा तो बड़े आराम से सोया। ये शब्दों का प्रयोग तुम जो है जागृत के शब्दों के अर्थ के अनुसार कर रहे हो या अपने अनुभव के अनुसार कर रहे हो? अगर अनुभव के अनुसार कर रहे हो तो उस समय भी तो कोई वाणी थी ही ना कोई शब्द था। तो वैखरी मध्यमा पश्यंती और इन सब का उद्गम कहां है नारायण? परा में। परा कहां है? मूलाधार में है। इसको आप पक्षियों में और पशुओं में बड़ी आसानी से देख सकते हो। अनुभव तो अपने में भी हो जाता है, लेकिन जैसे जब पक्षी बोलते हैं ना तो आप देखना उनका हाइंड पार्ट जो है उसका बिल्कुल वाइब्रेट करता हुआ मालूम पड़ेगा, वहीं से आवाज उठती है। अपने यहां भी ऐसा ही है। आप आसन से बैठ जाओ और ओंकार की ध्वनि करो और उस ध्वनि को भीतर तक जाने दो और वहां तक जाने दो जहां तक वो जा सकती है ना, तो आपको मालूम पड़ेगा ये कहां से उठ रहा है शब्द। मूलाधार से उठता है। मूलाधार में कहां से उठता है? अब वाणी की तो खोज हो रही है ना, वाणी की वाणी। तो वो तो सिवाय इसके कि आप उसका नाम या तो परमात्मा दो और या तो आत्मा दो, शब्द तो उसके लिए भी बोलना ही पड़ेगा, लेकिन चीज जो है वो वही है जो अंत में परावाणी की भी जो वाणी है उसी को वाणी की वाणी बोलते हैं। सब प्राणस्य प्राण, वही प्राण का प्राण है। प्राण माने सांस मान लो तो फिर उसको तो बहुत भीतर जाना पड़ेगा, और प्राण माने क्रियाशक्ति मान लो तो देखो ये क्रियाशक्ति कहां से उदय हो रही है। ये वेदांत का मूल विचार है कि क्रियाशक्ति और ज्ञान शक्ति ये दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है या एक ही चीज के दो पहलू हैं, क्या है? अगर अलग अलग मानोगे तो द्वैतवाद की सिद्धि होगी। एक पुरुष और एक प्रकृति ऐसा मानना पड़ेगा। सारी क्रिया प्रकृति में है और ज्ञान जो है वो पुरुष में है। और अगर अद्वैत की दृष्टि से विचार करना है तो तो फिर यही मानना पड़ेगा कि वस्तु एक ही है, एक दृष्टि से देखो तो ज्ञान है, एक दृष्टि से देखो तो क्रिया है। जैसे सिक्का होता है, हेड की तरफ से देखो तो भी सिक्का है, टेल की तरफ से देखो तो भी सिक्का है। अगर पहचान लिया कि ये चांदी है जो धातु है उसकी, तो आप पहचान गए नारायण। तो ये ज्ञान और शक्ति ये दो एक ही तत्व के दो पहलू हैं जो व्यवहार में हमको प्राप्त होते हैं। जब ज्ञान स्वरूप था तो उसमें क्रिया कहां से आ गई? अरे कहां से क्या आ गई? अच्छा देखो जरा मेरी उंगली की तरफ देखना, ये मैंने उंगली यहां से यहां तक ले गया, कुछ क्रिया हुई? आपको कुछ क्रिया मालूम पड़ी? क्रिया मालूम पड़ी इतना तो ठीक है, लेकिन जो मालूम पड़ना है वही तो ज्ञान है। और क्या ज्ञान है? प्रथम ज्ञान और दूसरा ज्ञान, इनका बीच में जो अवकाश है, उस अवकाश के कारण आप इसको क्रिया बोल रहे हो, लेकिन वास्तव में तो ज्ञान ही है। फर्स्ट नॉलेज, सेकंड नॉलेज, थर्ड नॉलेज, फाइनल नॉलेज, फिर इन सबको क्रिया जोड़ दो तो उसी का नाम क्रिया हो जाता है। तो केवल आत्मविज्ञान ही आत्मविज्ञान है नारायण। एक क्रिया तो व्यावहारिक पक्ष है उसका। सौ प्राणस्य प्राण चक्षुषश्चक्षु, चक्षु का जो चक्षु है वो तो बता ही दिया आपको कि नेत्र का नेत्र क्या है, पर्दे के पर्दे के पर्दे के भीतर चलते चले जाओ ना। तो अतिमुच्य धीरा, जो धीर पुरुष हैं वो इसको जान करके कि जो मूल में है वो अतिमुच्य, वो इनका आत्यंतिक रूप से अतिक्रमण कर जाते हैं। और प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, इस शरीर को छोड़ करके वो अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। ये हम शरीर को छोड़ने का मतलब मरने का मतलब मत ले लेना, जीते जी इस शरीर को छोड़ करके, ये शरीर मैं हूं और ये शरीर मेरा है, इस मिथ्या ज्ञान को छोड़ करके, ये भाष्यकार ने दोनों अर्थ किए हैं। यदि जीवन मुक्ति इसमें से निकालनी है तो मैं मेरा भाव उसका समाप्त हो जाता है, और यदि विदेह मोक्ष तय करनी है तो फिर मरने के बाद अमृत स्वरूप हो जाते हैं। मरने के बाद की नारायण किसने देखी है? जो जीते जी मुक्त है वही असल में विदेह मुक्त होता है, ये वेदांत का सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि जीवन में तो वो बंधा हुआ रहे और मरने के बाद वो मुक्त हो जाए। इसलिए सारे वेदांत का आग्रह इसी में है कि आप इसी समय इस मुक्ति को प्राप्त करें, इसी जीवन में प्राप्त करें। बाद की चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जो हो गया उसे आप बदल नहीं सकते, और जो होगा उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो है उस है को पहचान लीजिए, वही आप है नारायण। इस प्रकार से ये एक रकम सेति, ये पहले और दूसरे मंत्र का सार आपको प्रस्तुत किया। अब कल को तीसरा और चौथा मंत्र का सार प्रस्तुत करें। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।